संतप्त मानस शांत हो, जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान। अलिंग ग्रहण की चर्चा चल रही है, ये अधिकार है। रतनसार महाशास्त्र में तीन महाअधिकार हैं, ज्ञान तत्व प्रज्ञापन अधिकार, ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन अधिकार और शरणानियो सूचक चूलिका। इसमें से ज्ञान तत्व प्रज्ञापन महाअधिकार में चार अधिकार हैं, जिसका नाम शुद्धोपयोग अधिकार, ज्ञान अधिकार, सुखाधिकार और सुपरिणामाधिकार। और ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन में तीन अधिकार हैं, जिसका नाम है सामान्य ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन, विशेष ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन और ज्ञान ज्ञेय विभागाधिकार। ये जो गाथा आई है 172वीं, वो ज्ञान ज्ञेय विभागाधिकार की गाथा है। तो हमें दो बातें यहाँ ध्यान में रखने की खास है कि एक तो ये गाथा ज्ञेय अधिकार की है और दूसरी ये कि एक ज्ञेय ज्ञान विभागाधिकार की है। माने आत्मा ज्ञेय पने कैसा है, क्योंकि जब आत्मा को हम ज्ञायक कहते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि जैसे ज्ञान तत्व प्रज्ञापन की बात हो गई, लेकिन आत्मा का स्वभाव ज्ञायक है तो हम क्या करें, आत्मा कैसा ज्ञेय है ये समझना पड़ेगा ना। तो ज्ञायक रूप से ज्ञेय है, सभी कहता है ज्ञायक रूप से ज्ञात हुआ भगवान आत्मा, मुझे ज्ञात हुआ लेकिन कैसा हुआ, पर का कर्ता रूप में नहीं, पर का भोक्ता रूप में नहीं, बस स्वपर का ज्ञायक रूप से ज्ञात हुआ है ना। तो ऐसे ही इस अधिकार में कहते हैं कि भगवान आत्मा ज्ञायक रूप से कैसे ज्ञेय है, ज्ञेय भी है और ज्ञायक भी है, कि ज्ञायक तो उसका स्वभाव है और वो भी जानने में आता है इसलिए ज्ञेय है। और ये जो बताई जा रही है बात, ज्ञान और ज्ञेय में विभाग बताने के लिए बताई जा रही है। ज्ञान माने अपना भगवान आत्मा, पर का ज्ञान ज्ञान नहीं है, क्योंकि आपको याद हो जो परसों अपन ने आज गाथा शुरू की थी तो उसमें तीन बातें बताई थी कि एक तो अरस अरूप अगंध स्पर्श के पुद्गल से विभाग करने के लिए है, तो चेतना गुणम ये अचेतन से विभाग करने के लिए है और उसमें भी अपनी चेतना ये पर जीव की चेतना करने की दृष्टि से है। माने पर जीव की जो चेतना है वो ज्ञायक नहीं है हमारे लिए, तो वो ज्ञेय है। अब अपनी अपनी चेतना कि अपने लिए भी वो ज्ञायक भी है और ज्ञेय भी है, लेकिन यहाँ चर्चा उसके ज्ञेयपने की चल रही है, ज्ञायकपने की, क्योंकि ज्ञेय अधिकार है। अब वो ये कह रहे हैं कि वो भगवान आत्मा कैसे जानने में आए, हमें कोई चिन्ह बताओ, लिंग माने चिन्ह। तो वहां पर अलिंग ग्रहण के 20 अर्थ किए, 21 किए, एक तो मैंने बता दिया था। तो पहले उन्होंने सबसे पहले हमारे ज्ञान की प्रवृत्ति क्या है कि हम इंद्रियों के माध्यम से अनादिकाल से आज तक ज्ञान का प्रयोग करते आए हैं। तोरमल जी ने मोक्षमार्ग प्रकाशक के 76वें पेज पर ये बात लिखी है, 76 पेज के नीचे का हिस्सा देखना आप, लास्ट की 8-10 लाइन है, उसमें आपको ये लिखा मिलेगा। क्या लिखा मिलेगा, कि किसी ने प्रश्न किया कि अनादि से इस आत्मा की देह में एकत्व बुद्धि है, तो अनादि काल से तो कुगुरु का संयोग नहीं है, कुदेव का संयोग नहीं है, किसी दूसरे ने उन्हें समझा दिया हो, ऐसा तो है नहीं, स्वभाव से ही अनादि से है एक केंद्रीय पर्याय में। तो एक केंद्रीय पर्याय में एकत्व बुद्धि शरीर में कैसे आ गई, तो उन्होंने जवाब दिया वहां पर कि अनादि से इस आत्मा को इंद्रिय ज्ञान है, ये लिखा है वहां। इंद्रिय ज्ञान ज्ञान नहीं है, ये इसकी अपेक्षा तो मैं आपको बता चुका हूं, लेकिन वहां ये साफ शब्दों में लिखा है कि अनादि से इस आत्मा को इंद्रिय ज्ञान, इंद्रिय ज्ञान है माने इसने अपने ज्ञान का उपयोग इंद्रियों के माध्यम से ही किया है, इसलिए इसे सिर्फ पुद्गल का ज्ञान हुआ है। और सबसे नजदीक का पुद्गल शरीर है, इसलिए शरीर में इसने ये कद बुद्धि कर ली। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं कि ये पांच बोल, बीस में से पांच बोल नेगेटिव है। नेगेटिव है माने कि किन किन चीजों से आत्मा ग्रहण करने में नहीं आता, जानने में, ग्रहण करने में जानने में, तुम्हारी आत्मा तुम्हें पहचानने में जानना हो तो किन किन चीजों से जानने में नहीं आता, इस बात में उन्होंने पांच बोल खर्च किए। छठवां बोल इस बात का है कि किससे ज्ञान आएगा, और ये छह बोल द्रव्य के बोल हैं, उसके बाद में गुण की बात चलती है। अपन आज मेरा उद्देश्य उन छह बोलों तक आपको ले जाना है। क्या तो हम कैसे मानते हैं कि सबसे पहले तो हमने जानने का साधन इंद्रियों को मान रखा है, तो वो ये कहते हैं कि ये जो भगवान आत्मा है गे रूप, गे माने उसे जानना है अपन को, वो इंद्रिय ज्ञान से जानने में नहीं आएगा। तो इसके उन्होंने दो बोल बनाए, कौन कौन से, कि ना तो जे इंद्रियों से जानेगा और ना इंद्रियों से जानने में आएगा। इस आत्मा का स्वभाव जानना तो है, लेकिन इंद्रियों के माध्यम से जानना इसका स्वभाव नहीं है। चलना अब गुर्दे में तो काफी लंबाया है इसको, कैसा हम गुर्दे प्रश्न सुनते हैं, कान से सुनते हैं, ये करते हैं, ये करते हैं, तो मैंने आपको बता दिया था संक्षेप में, तो आत्मा के बारे में जानते हैं, आत्मा के बारे में, आत्मा में नहीं। तो इंद्रिय ज्ञान कहते इंद्रियों के द्वारा ये आत्मा ना तो पर को जानता है ना अपने को जानता है, तो इस जानने का काम भी इंद्रियों के द्वारा नहीं करता। नहीं करता का मतलब यह है कि ये करना इसका स्वभाव नहीं है। नहीं जानता का मतलब है ये जानता नहीं है, ऐसा अर्थ नहीं, समझ लेना। आप ये क्या है, बोलो ये कितनी उंगलियां हैं, तो आपने आंख से देख के जानी ना, तो नहीं जानता है वाली बात कहां खड़ी होती है, जाने के नहीं जाने। तो वो कहते हैं ये इंद्रियों के माध्यम से आत्मा जाने हैं, ये आत्मा का स्वभाव नहीं है, ये आत्मा की विकृति है, ये कुछ गड़बड़ी है। हम सबको आपको चश्मा लग गया, तो हमारा स्वभाव चश्मे से जानने का है, क्यों हमारा स्वभाव तो बिना चश्मे के ही जानने का है, तो ये तो हमारी आंख की विकृति का सूचक है। अब दो बात समझ लेना, अंधेपन का सूचक नहीं है और स्वभाव का सूचक भी नहीं है। फिर कहता हूं ध्यान से सुनना, ये लोग कहते हैं ना इंद्रिय ज्ञान ज्ञान नहीं है के मामले में, उदाहरण के लिए कि एक आदमी को बिना चश्मा के दिखाई नहीं देता, तो चश्मा लगाने से दिखाई देता है, तो मैं पूछता हूं वो अंधा है कि सूचता। आनंद भाई अंधा सूचता समझते हैं, उसे हम अंधा कहें कि अंधा नहीं है माने सूचता उसे दिखाई देता है, क्या माने कि बिना चश्मा के दिखाई देता ही नहीं है तो अंधा ही कहेंगे ना। ये चश्मा हमारे अंधेपन की निशानी है मुकुंद भाई, कि हमारी सूझतेपन की निशानी है। तो वो कहते हैं कि देखना दो प्रकार का है, एक चश्मा के द्वारा और एक बिना चश्मा के, ये दोनों देखने के भेद हैं, नहीं देखने के भेद नहीं है। तो पहली बात ये है कि अंधा नहीं है, उसे अंधा नहीं कहते, इंद्रिय ज्ञान वाला अंधा नहीं है, उसे ज्ञान ही नहीं है ये बात नहीं है, समझा नहीं, अंधा नहीं है वो। तो फिर तो कहते हैं इंद्रिय ज्ञान चश्मा जो लगाता है वो आत्मा का स्वभाव भी नहीं है, स्वस्थ आदमी का वो आंख की विकृति का स्वभाव है, आंख में कोई कमजोरी है इस बात का स्वभाव है। तो आंख से आत्मा, इंद्रियों से जानना, ये आत्मा का स्वभाव नहीं है। जानता तो है लेकिन वो स्वभाव है, विकृति है। ये इतला बोल का अर्थ है कि इंद्रियों से जानना आत्मा का स्वभाव नहीं है। जानता नहीं है ये बात नहीं है, ये तो हमारा दुर्भाग्य है कि इस बात को मुझे यहां बल देना पड़ रहा है, मुझे बताना तो यही चाहिए। क्या वो ये कह रहा है कि इंद्रियों के जानना आत्मा का स्वभाव नहीं है, स्व को भी और पर को भी। स्व को तो नहीं है लेकिन पर को, पर को तो इंद्रियों से जानने का स्वभाव है कि नहीं है, वो नहीं है। क्योंकि यदि पर को इंद्रियों से जानने का स्वभाव होता तो सिद्ध भगवान को पर दिखाई नहीं देते, क्योंकि उनके इंद्रियां नहीं है। एक बोलूंगा। अब दूसरा, ये इंद्रियों से जाने ऐसा तो इसका स्वभाव नहीं है, लेकिन ये इंद्रियों से जानने में आए ऐसा भी इसका स्वभाव नहीं है। किससे? कि पर से भी और अपने से भी। ये अपने आत्मा को इंद्रियों से नहीं जान सकता और तुम भी हमें इंद्रियों से नहीं जान सकते। सौर पर दोनों लगाना है यहां, मन तुम भी मुझे इंद्रियों के द्वारा नहीं जान सकते और मैं भी अपने को इंद्रियों के द्वारा माध्यम से नहीं जान सकता हूं। इसका दूसरा बोले क्या कि इंद्रियों के माध्यम से जाना जाए ऐसा भगवान आत्मा का स्वभाव नहीं है। अब देखो तो गे शब्द कि आत्मा ऐसा गे नहीं है जो इंद्रियों द्वारा जाना जाए, और आत्मा ऐसा गे नहीं है जो इंद्रियों से जानने के लिए बाध्य हो। अपने जानने के लिए इंद्रियों के बिना जिसको चले नहीं, ऐसा गे गे नहीं, ज्ञायक नहीं, ऐसा गे नहीं है। क्योंकि गे अधिकार है। कैसा है भगवान आत्मा? जब इंद्रियों के द्वारा जानने के लिए बाध्य भी नहीं है और इंद्रियों के द्वारा जाने जाने के लिए भी बाध्य नहीं है। इसका मतलब इंद्रिय हमारे किसी काम की नहीं है, क्योंकि इंद्रियां हैं पांच, इंद्रियों के समूह का नाम तो शरीर है। तो वास्तव में क्या हुआ? शरीर से भेद विज्ञान। अब इतनी दिक्कत है हेमचंद जी, शरीर से भेद विज्ञान को तो हमने बहुत स्थूल बात मान ली और इसको हमने सूक्ष्म मान ली। इसका मतलब या तो हम वो नहीं समझे या ये नहीं समझे। पांचों इंद्रियों के अलावा शरीर क्या है मुझे बताओ? जो स्पर्शन इंद्री, ज्ञान इंद्री, अब इसके अलावा पांच इंद्रियों को हटा दो होमज इंद्री तो शरीर बचता है कुछ? पांच इंद्रियों के समूह का नाम है शरीर, और पांच इंद्रियों तेरे किसी काम की नहीं है। इसका मतलब हो गया शरीर तेरे किसी काम का नहीं। ये पांच इंद्रियों से तू भिन्न है, तेरे ज्ञान की सहायक नहीं है, माने ये शरीर तेरे ज्ञान का सहायक नहीं है। तो इस शरीर से ही भेद विज्ञान हुआ ना। अब ये तो अपनी पुरानी बात हो गई। अब नए क्या किया इन्होंने? अभी मैं तीसरे को जरा बगल में रखता हूं, अब चौथा तो बोलो, पांचवा लो। हाँ, तो समझने में सुविधा रहेगी। वो कहते हैं कि इंद्रियों से नहीं जानते हैं तो अनुमान से जानते हैं कि नहीं? सीधी बात, अनुमान से। दूसरा प्रश्न ये है कि हम समझते हैं कि हम अनुमान से जान लेंगे, कोई चिन्ह हम दिखाओ जान लेंगे कि यहाँ पानी है, यहाँ जी, अनुमान से जान लेंगे। तो वो कहते हैं कि तेरा आत्मा अनुमान के द्वारा जाना जाए, तू जाने अपने को अनुमान से और पर जाने तेरे को अनुमान से, मात्र ऐसा नहीं है। अनुमान से नहीं जाना जाता ऐसा नहीं है। तो ध्यान से सुनना विपिन भाई, ये सूक्ष्म है। क्यों? अनुमान से भी जाना जाता है, लेकिन अकेले अनुमान से भी जाना जाता है, प्रत्यक्ष भी जाना जाता है, नहीं तो केवल ज्ञान से जाना नहीं जाएगा आत्मा। क्यों? तो मात्र इसमें लिखा है सब, मैं खूब पढ़ पढ़ के आया हूं, आपको पढ़ना हो तो पढ़ लेना, मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं है यहाँ। क्या क्या कह रहे हैं? मात्र अनुमान से जाना जाए ऐसा नहीं है जी। आत्मा आत्मा का स्वभाव ऐसा नहीं है कि वो अनुमान के यहाँ पर सोल एजेंट अनुमान को दे दिया होगा बस तुम जानवर कोई नहीं जाने। प्रत्यक्ष से भी जाना जा सकता है, आगम से भी जाना जा सकता है। इसमें ऐसा ही लिखा है कि गुरुदेव के श्रुत ज्ञान से जाना जाता है ना, और मति ज्ञान अनुमान तो मति ज्ञान का भेद है, और केवल ज्ञान से जाना जाता है कि नहीं जाना जाता है। तो मात्र अनुमान से जाना जाता माने जाए तो प्रत्यक्ष जो अनुभव होता है वो बाधित हो जाएगा, सुसंवेदन बाधित हो जाएगा और केवल ज्ञान बाधित हो जाएगा। ये कौन सा हुआ? चौथा गुण। और पांचवा इससे उल्टा, ये अनुमान से जाना जाए इतना नहीं है मात्र, ये अनुमान से जाने दूसरों को मात्र ऐसा नहीं है। प्रत्यक्ष भी जान सकता, अनुमान से भी जान सकता, आगम से भी जान सकता, छह प्रमाण जानने के लिए तो है, हर बात को जानने के लिए से अनुमान से ही जानना पड़े। तुम्हारे आत्मा को हमें अनुमान से ही जानना पड़े ऐसा लिखा है मुझे बर्मा फरमाते हैं, ऐसा नहीं। हम तुम्हारे आत्मा का अनुभव कैसे करेंगे? केवल ज्ञान हो जाएगा तब तो तुम्हारे आत्मा को प्रत्यक्ष जान लेंगे या नहीं? तो पहला और दूसरा इंद्रियों के द्वारा जानने का काम करे ऐसा नहीं है ये आत्मा, इंद्रियों द्वारा इसे जाना जाए ऐसा नहीं है आत्मा, अनुमान द्वारा ये दूसरों को जाने ऐसा नहीं है ये आत्मा, और दूसरे इसे अनुमान से जान ले अकेले ऐसा नहीं है ये आत्मा। चार हो गए, अब तीसरा छूट गया था बीच में। तो कहते हैं इंद्रियां और अनुमान को मिला दो तो तीसरा गुण बन जाएगा। पढ़ो पढ़ो किताब में लिखा है कि ऐसे अनुमान से कि जिसका चिन्ह इंद्रियों से जाना जाए, जैसे धुआं को देखा था ना आकाश उसमें पर्वत पे, तो किसने देखा था? आंख से देखा था, तो इंद्रियों से देखा चिन्ह और फिर उस चिन्ह से अनुमान लगाया। हमने देखा कि अपने कहते हैं कि ये आदमी जिंदा है कि मर गया, तो हमने अपनी आंख से देखा कि आंख खोल रहा है, हाथ पैर हिला रहा है, होता कि नहीं होता इस बार जिंदा है। तो हमने इंद्रियों से देखा इस चिन्ह को और उससे फिर अनुमान लगाया कि अंदर भी जिंदा है। ये तीसरा बोल ऐसा है। तो तीसरे बोल में ये कह रहे हैं ए भगवान आत्मा ऐसा नहीं है कि ऐसा कोई चिन्ह बता दो जो इंद्रियों से तुम देख लो और फिर उससे अनुमान लगा लो, ऐसा नहीं है। तो फिर पांच हो गए, कौन कौन से हो गए पांच? पहला इंद्रियों के द्वारा जाने ऐसा नहीं है, दूसरा इंद्रियों द्वारा जाना जाए ऐसा नहीं है, तीसरा अनुमान इंद्रियों से जाने हुए साधन से अनुमान द्वारा जाना जाए ऐसा नहीं है, चौथा अनुमान द्वारा जाना जाए ऐसा नहीं है, और पांचवा अनुमान द्वारा जाने ऐसा नहीं है। पांच दो हो गए अनुमान के, दो हो गए इंद्री के, और एक हो गया दोनों के मिक्सर का, तीसरा हो गया मिक्सर का। देखो मैंने आप बता मैं इधर पढ़ के सुना देता हूं, अब इसकी जो इस भाषा है और आप पकड़ने की कोशिश करना इस भाषा में से ये भाव निकलता है कि नहीं, है ना, और आपसे निकलता है कि नहीं निकालना। अब है किताब जिनके हाथ में देखना, गुरुदेव श्री ने एक परंपरा डाली थी कि हर एक के हाथ में किताब होना चाहिए, अब वो धीरे धीरे छीण होती जा रही है, अभी तक पूरी गायब नहीं हुई है। अनंत भाई जैसे लोग एक आदमी के हाथ में है किताब में क्यों, लेकिन वो ज्यादा दिन तक चलने वाले नहीं है, जैसे माथे के बाल बुढ़ाते में उड़ते जाते हैं ना, क्यों अभी इतने ही उड़े हैं बाकी भी उड़ने वाले हैं, ऐसे ये भी परंपरा उड़ के खत्म हो जाने वाली है। तो क्या जो मैं पढ़ता हूँ जो ये बातें मैंने आपको बताई ना पांच आपकी समझ में आई, अब इस भाषा में समझ में आने के बाद भी इस भाषा से समझ में आए तो समझ लेना मुक्त हो गया तुम्हारा। कौन सा? ग्राहक ज्ञायक जिसके लिंगों के द्वारा अर्थात इंद्रियों के द्वारा ग्रहण माने जानना नहीं होता वह अलिंग ग्रहण है। इस प्रकार आत्मा अतीन्द्रिय ज्ञानमय है, किस अर्थ की प्राप्ति होती है। एक बात हुई बाई गे जिसका लिंगों के द्वारा अर्थात इंद्रियों के द्वारा ग्रहण जानना नहीं होता, इसलिए अलंग ग्रहण है। इस प्रकार आत्मा इंद्रिय प्रत्यक्ष का विषय नहीं है, इस अर्थ की प्राप्ति होती है। जैसे धुएं के से अग्नि का ग्रहण होता है, उसी प्रकार लिंग द्वारा अर्थात इंद्रिय गम इंद्रियों से जानने योग्य चिन्ह द्वारा जिसका ग्रहण नहीं होता वह अलंग ग्रहण है। इस प्रकार आत्मा इंद्रिय प्रत्यक्ष पूर्वक अनुमान का विषय नहीं है, ऐसे अर्थ की प्राप्ति होती है। दूसरों के द्वारा मात्र लिंग द्वारा ही जिसका ग्रहण होता हो, ऐसा ये भगवान आत्मा नहीं है, इसलिए अलंग ग्रहण है। इस प्रकार आत्मा अनुमेय मात्र नहीं है, ऐसे अर्थ की प्राप्ति होती है। और जिनके लिंग से ही पर का ग्रहण नहीं होता वह अलंग ग्रहण है। इस प्रकार आत्मा अनुमाता मात्र नहीं है, ऐसे अर्थ की प्राप्ति है। अब याद रखने में बहुत सरल है, अब ये तुम पे रटा नहीं जाएगा, लेकिन इतना याद रखो कि ये भगवान आत्मा जानने का काम अकेला इंद्रियों से ही करता हो ऐसी बात नहीं है, इसका नाम है अलंग ग्रहण। ये आत्मा इंद्रिय दूसरों के द्वारा इंद्रियों के द्वारा से जाना जाए कि ऐसा नहीं है, ये दूसरा अलंग ग्रहण। अब पहले में तो लिंग माने क्या हुआ, इंद्रिय, और दूसरे में क्या वो कहते, इसका अर्थ क्या हो गया कि अतीन्द्रिय ज्ञान गम्य है, अतीन्द्रिय ज्ञान से जानता है, और दूसरे में क्या कहा कि इंद्रियों द्वारा जाना जाए, इसका अर्थ ये हो गया इंद्रिय प्रत्यक्ष द्वारा नहीं जाना जाएगा, ऐसे अर्थ की प्राप्ति होती है। अब तीसरे में ऐसा कोई साधन नहीं है कि जिसे देखकर तुम अनुमान करके भगवान आत्मा को जान सको, तीसरा। चौथा, अकेले अनुमान से जान सको ऐसा नहीं है, और आत्मा किसी को अनुमान से जाने ऐसा नहीं है, अकेले अनुमान से वो प्रत्यक्षाधिक से भी जानता है। तो इन पांच बातों में मुख्य रूप से द्रव्य की दृष्टि से बात हुई। द्रव्य की दृष्टि से कैसे बात हुई, क्योंकि आत्मा जानता है और आत्मा जाना जाता है की बात है। तब तो छठ में बोल में कहते कैसे जाना जाता है, तो एक प्रत्यक्ष जाना जाता है, ये छठवां बोल है। पांच बोल है कैसे नहीं जाना जाता है, और छठवां बोल है कैसे जाना जाता है का, ये प्रत्यक्ष जाना जाता है, आत्मा सीधा आत्मा आत्मा को जानता है, ये पांचवा। तो स्वाको और पर को दोनों को क्या कहते, स्वाको पर को तो कहा जानता है, पर को तो आगम से जानता है, और स्वानुभव का तो प्रत्यक्ष अकेला अपना ही होता है, तो केवल ज्ञान से वो जानता है ना, केवल ज्ञान से पर को प्रत्यक्ष जानता क्या नहीं, तो अकेले अनुमान से जानना कहाँ रहा, हिंदी से जानना कहाँ रहा। और गुरुदेव ने तो इसमें और बारीकी में गए हैं कि सुसंवेदन ज्ञान से पर को जानता है पर आत्मा, ऐसा लगा। अब ज्यादा उसी तक गहराई में मैं नहीं जानना चाहता हूँ, ना अपने पास समय है। तो इस तरीके से छह बोल मैंने आपको याद कराए हैं, अब मैं आऊंगा आठ दिन बाद, पर इन छह बोलों में से आपसे पाठ सुनूंगा, यदि आपको याद हो गए होंगे तो बाकी तो उदय याद करा देंगे। अब पूज्य गुरुदेव श्री का आज जन्मदिन है, मैं सोच रहा था अभय कुमार जी के गुरुदेव श्री का सबसे बड़ा भगत कौन है, इसकी प्रतियोगिता रखी जाए तो कौन जीतेगा, क्या मेरा एक कहना है कि उनकी जो दिव्य वाणी है जो हमें सारे 8,000 कैसेटों में रोचन रत्नाकर के रूप में बहुत हजारों हजारों पेज में शास्त्रों में विद्यमान हमारे पास जो उपलब्ध है, जिसने उसका सबसे ज्यादा लाभ उठाया हो वो है, हुकुमचंद नहीं, वो है कि जिसने सबसे ज्यादा उसका लाभ उठाया हो, गुरुदेव जी की वाणी का सबसे ज्यादा लाभ उठाया हो वो है। कलकत्ते में पंच कल्याणक में ब्रह्मचारी चंदू भाई जी भी आए थे, है ना, तो हम बगल में ही ऐसे साथ साथ में ही बैठते थे। मैंने कहा था वहाँ पंच कल्याणक में कि भाई हमको बहुत दिनों बाद ऐसा साथ साथ बैठने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, और हम जयपुर में तो ऐसा नहीं कर पाए ना सोनगढ़ में, लेकिन कलकत्ता वालों ने ऐसा करके बता दिया है। लेकिन मैं चंदू भाई को सबसे ज्यादा भाग्यशाली व्यक्तियों में मानता हूं। सुनना क्यों, क्योंकि जितना सब समागम पूज्य गुरुदेव श्री का उनको मिला है, जितने अधिक नजदीक तक वे उनके साथ रहे हैं घर में है ना, उतना शायद कोई दूसरा आदमी नहीं रहा। सोनगढ़ में रहा होगा लेकिन 24 घंटे साथ में रहने का सौभाग्य उनको प्राप्त हुआ, लेकिन सेवा प्राप्त करने का चंदू भाई मौजूद थे। तुम भाग्यशाली हो, सबसे ज्यादा भाग्यशाली तुम हो। ये तो अकेले शारीरिक शांति की बात है, आज ऐसे भी लोग हैं कि जिनका उस समय जन्म ही नहीं हुआ था जब गुरुदेव श्री का स्वर्गवास हुआ। सुबह में आवाज सुन रहा था सांजी स्वामी नो जय, वो आवाज उनमें से लोग बच्चों के मुख से आ रही थी कि जिन्होंने उनके उनके बाप ने भी देखा होगा कि नहीं देखा होगा इसकी भी कल्पना नहीं है। तो क्या कल के ऐसे नहीं हो सकते हैं कि जो सबसे ज्यादा गुरुदेव की वाणी का लाभ ने कष्टों से सुनकर पढ़कर क्यों? इसलिए मैं ये कहता हूं कि मैंने ये अनुभव करता हूं कि मतलब समय सार समय लीजिए, उन्होंने 19 बार सभा में प्रवचन करके सुनाया, और ऐसे श्रोता शायद ही कोई होगा एक आध जिसने 19 बार बराबर उसको सुना होगा। लेकिन मैंने समय सार अनुशीलन लिखा, समय सार का सार लिखा और समय सार पर टीका लिखी और कई जगह पढ़ा, तो मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं कि मैंने गारंटी से कम 19 बार उनको पढ़ा। जब लिखता हूं तो बहुत पढ़ता हूं गुरुदेव को, बार 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 बार, इसलिए कि उसका मरम भी मेरे ख्याल में आए, कोई बात तत्व के विरुद्ध ना निकल जाए, ख्याल में है ना, क्योंकि न केवल उसमें अपने अनंत संसार का कारण होगा वो, बल्कि अभी गुरुदेव के सामने रहकर वैसे श्रोता और बहुत विद्वान मौजूद हैं तो एक सेकंड में पकड़ लेंगे कि आपने ऐसा कहा ऐसा लिखा और गुरुदेव तो ऐसा कहते थे। क्या बोला गुरुदेव तो ऐसा कहते थे, नियमसार की गाथा में गुरुदेव तो कैसा कहते थे, कौन सा था आता ना शुरू शुरू में ही नियमसार की गाथा पहले दूसरी गाथा आती है, तो मैं आज कर रहा था निर्मला बहन ने बोला कि नहीं नहीं गुरुदेव तो ऐसा बोलते, गुरुदेव तो ऐसा बोलते थे, क्या था निर्मला बहन है ख्याल कुछ क्या था? तो मेरे कहने का मतलब अभी ऐसे लोग हैं, इसलिए भी समझ लो आप एक कान बोल ही रहा हो तो भी मेरा तो सौभाग्य है कि मुझे इतनी बार उनके पढ़ने को मौका मिला कि कोई भी बात में अंतर ना आ जाए, वस्तु के स्वरूप के साथ में अंतर ना आ जाए, सर्वज भगवान की वाणी के साथ अंतर ना आ जाए, आगम के साथ अंतर ना आ जाए और गुरुदेव की वाणी के साथ अंतर ना आ जाए, इतना अंतर ना आ जाए और फिर भाषा सरल हो, एकदम सहज हो, क्योंकि लिखने का जो उद्देश्य है कि जन जन तक वो बात पहुंचे तभी सफल होगा। मुझे आज इसके दिन ये बात कहते हुए बहुत अंदर से उल्लास है कि पूज्य गुरुदेव श्री की अर्थी रखी थी और वहां पर शोक सभा चल रही थी, मधुकर जी ने कुछ चर्चा की थी, उस वक्त मेरा यह बहुत बहुत गदगद अंदर से हो गया था, तो मैंने और बाबू भाई ने मिलकर उनकी चिता की अग्नि के सामने प्रतिज्ञा की थी। क्या भाषण में भी तो वो बात कही थी कि रोने बैठने से काम नहीं चलेगा, सूरज अस्त हो जाता है तो दुनिया के काम बंद नहीं होते हैं, घर घर में दीपक जल जाते हैं, जिसकी जैसी हैसियत होती है, कोई छोटी सी लालटेन जलाता है, कोई दीपक जलाता है, कोई गैस जलाता है, कोई जो भी जिससे बनता है, क्यों काम सब चालू रहता है, काम चालू रहना चाहिए। कभी जब तक अपना जीवन में प्राण रहेंगे, खून की बूंद में एक ताकत रहेगी, तब तक पूज गुरुदेव श्री के इस तत्व ज्ञान को जो महाभाग्य से हमें प्राप्त हो गया है और वो समझ में भी आ रहा है, उसे जन जन तक पहुंचाने के महान कार्य में अपने जीवन को लगा देंगे। बहुत ईमानदारी के साथ उस प्रतिज्ञा को हमने पाला है, उसमें कितने सफल हुए हैं कितने नहीं हुए हैं हम कुछ नहीं कह सकते हैं, लेकिन अपने अंदर में उसके बारे में एक सेकंड भी कोई दूसरा विकल्प खड़ा नहीं किया, सब साथ छोड़ के चले गए। रात को मुझे बहुत याद आई, राम जी भाई चले गए, खेम जी भाई चले गए, बाबू भाई के साथ देने की बहुत संभावना थी, क्यों वो भी चले गए, जिनसे हम आशीर्वाद ग्रहण करते थे वे भी चले गए, और जिनसे विचार विमर्श कर सकते थे वे भी चले गए। आज सचमुच कोई ऐसा नहीं दिखाई देता कि जिससे हम विचार विमर्श भी गंभीरता से कर सके। फिर भी ये हमारी एक फौज खड़ी हो गई है, ये जतीश भाई और अभय कुमार से लेकर के 500 विद्वानों की, और वो जिस तरह से इस गुरुदेव की वाणी के प्रचार और प्रसार में जी जान से जुट रहे हैं कि जिससे हमको कभी कभी ये कहना पड़ता है कि भाई जी अपने आप हार्ट का भी ध्यान रखो, माने उस काम से हमें उन्हें रोकना पड़ता है। तो ऐसी फौज का साथ प्राप्त हो गया है, इससे बहुत बड़ा अंदर में संतोष है कि हमने तो जीवन के अंत तक की ही प्रतिज्ञा की थी, और ऐसा तो ये लगता है कि पंचम काल के अंत तक ये प्रतिज्ञा नहीं होगी। जिनवाणी ही परम शरण है, गुरुदेव की वाणी ही हमारे लिए आशरण है। मेरे को तो गुरुदेव के दर्शन से पहले गुरुदेव के सिद्धांत का दर्शन हुआ था और उनकी वाणी का दर्शन हुआ था। मैंने अपनी ये 12 भावना फिल्म किताब में मेरी भावना में शायद एक बात लिखी है, छोटी सी 2 मिनट की घटना है कि हम विद्वान हो गए थे, शास्त्रीय न्यायाधीश हो गए थे, रोजाना प्रवचन करते थे और लोकप्रिय प्रवचनकार थे, तब भी हमारे प्रवचनों के लिए दूर दूर से मांग आती थी। मेरे भाई साहब, बड़े भाई साहब रतन चंद जी झांसी गए हुए थे, हम बमीनाना रहते थे, तो वहाँ एक हमारे भांजे का दोस्त, भांजा नहीं भांजे का दोस्त, उसका नाम नाथू राम था, अभी होगा मैं पता नहीं, उसने पूछा कि मामा जी आप तो पंडित हो, हमारे एक प्रश्न का जवाब दो। यहाँ से हमारी कहानी शुरू होती है। उनका बोलो भैया क्या बात है, कहते केवली के भगवान के ज्ञान में जो कुछ आया है वैसा ही होगा, हाँ बिल्कुल वैसा ही होगा, तो हमारा पुरुषार्थ का क्या था, हम क्या करें, हमें क्या करना है। तो एक प्रश्न उसमें नाथू राम नाम के व्यक्ति ने भाई साहब से किया। पंडित नाम के प्राणी की एक विशेषता होती है कि कोई भी कोई प्रश्न करे उसका उत्तर उसे आता हो नहीं आता हो उत्तर जरूर देगा, दोधा पट्टी करेगा, कुछ ना हार नहीं मान सकता, क्या ये नहीं कह सकता कि मुझे नहीं आता। हम भी उन्हीं में से थे, लेकिन पहली बार भाई साहब ने उससे ये कहा कि भैया तुमने प्रश्न तो बहुत मजबूत बहुत बढ़िया किया है, मेरे को इसका उत्तर ख्याल में नहीं आ रहा है, अभी मैं अगले हर शनिवार को जाते थे, वो आज भी शनिवार है, शनिवार के दिन मेरा जन्म भी हुआ था, और जिस दिन सोनगढ़ में भगवान विराजमान हुए थे ना उसी दिन मेरा जन्म हुआ था। जेठ बदी अष्टमी हमारी और आपकी वैशाख बदी अष्टमी के दिन। अब मुझे संसंबद्ध मालूम नहीं है, कल कंचन बहन ने बताया था, अब संसंबद्ध अब बताएंगी वो तो मालूम पड़ेगा, मुझे भी याद नहीं, उन्होंने ही बताया था। कि उस दिन भगवान विराजमान सबसे पहले समय सारणी थे। तो मैं क्या बात कर रहा हूँ, उनने कहा कि मैं अगले शनिवार को आऊंगा और हुकुमचंद से बातचीत करके इसको समझकर सोचकर शास्त्रों में से खोजकर उत्तर लाऊंगा, तब तुम्हें जवाब दूंगा। पहली दफे उन्होंने ये बात जवाब दिया उसे और वहां से घर चल गया। चले आए और आकर के हम दुकान करते थे, तो दुकान पर सामान तो बाद में रखा, पहले मेरे से ये कहा कि आज उसने ऐसा ऐसा प्रश्न मेरे से किया और मेरे से कोई उत्तर देते नहीं। मैं भी वो प्रश्न के दंग रह गया। क्या हम रोजाना प्रश्न करते थे मंदिर में, मैं ही करता था। शाम को मैं मंदिर में प्रश्न करने गया तो वो प्रश्न में मैंने ये बात कही कि आज ऐसा ऐसा हुआ, तो इस प्रश्न का उत्तर हमारी समझ में नहीं आ रहा है। तो एक बहन थी जो रोजाना प्रश्न सुनती थी, उसका नाम था चिंताबाई, और उनका लड़का मेरा दोस्त था, हम साथ में घूमने घूमने जाया करते थे। तो उसने कहा पंडित जी इसमें क्या है, ये तो कांजी स्वामी की किरणबद्ध पर्याय है, उसे मालूम था बड़े मालूम। उसने कहा कांजी स्वामी की किरणबद्ध पर्याय है, कहा कैसी, फिर हमने उससे बहुत प्रेम से पूछा तो बोले आपको नहीं मालूम है। नहीं मालूम हमको तो, कोई किताब विताब है? अरे है। तो उसी वक्त वो गई और मंदिर में से दो आत्म धर्म के अंक निकाल के लाई। जब ज्ञान स्वभाव गए स्वभाव भी नहीं छपी थी, एक अंक में 8 प्रवचन थे और एक में 5 थे, और दोनों में क्रमबद्ध पर्याय 13 प्रवचन गुरुदेव के क्रमबद्ध पर्याय पर थे। तो वो उसने ला करके हमको दे दिए और हम रात भर उन्हें पढ़ते रहे। सुबह तक तो हमारा काम हो गया, मतलब हमारी बिल्कुल कोई शंका हमारे चित्त में नहीं रही और वो बात हमारे ख्याल में पूरी आ गई। और उस दिन से लेकर आज तक एक पल मुझे ऐसा याद नहीं आता है कि जब उसमें हमको शंका हुई हो, गुरुदेव के दर्शन नहीं हुए उस दिन से। तो हम तो शास्त्र को भी गुरु और देव से ज्यादा महान मानते हैं कि उनके माध्यम से, उस आत्म धर्म के माध्यम से हमको इसकी प्राप्त है। वो हमारे पास मौजूद है, गुरुदेव की वाणी चाहे बोलने के रूप में हो चाहे उसके रूप में है, तो क्या गया? तो साहब साक्षात देखना होनी चाहिए और ज्ञानी की होना चाहिए, अज्ञानी की होना चाहिए। अब मैं आपसे कहता हूँ गद्दी पर बैठ के, शास्त्र में ये भी लिखा है कि जिन वाणी से पढ़ करके भी सम्मा दर्शन का निमित्त होता है, ये भी देशना लब्धि में ये भी होता है। तो साहब ये तो ज्ञानी की अज्ञानी की, अरे किसने सुनाई इसका मतलब नहीं है, किसकी है ये तो कुंद कुंद की वाणी है, ये हुकुमचंद की वाणी थोड़ी है। हम एक एक पंक्ति निकाल निकाल के आपको बता रहे हैं, ये हमारी बात है। बोलो वो जिनवाणी हमारे पास उपलब्ध है, हम उसका पूरा पूरा लाभ उठाएं। कभी कभी तो मैं ये कहता हूं कि आज का ये जमाना भगवान महावीर के जमाने से भी बहुत अच्छा है। क्या आप क्या बात करते हो, वो चौथा काल जब साक्षात तीर्थंकर परमात्मा विराजमान होंगे, जब उनकी केवल ज्ञान होगा, उनकी दिव्य ध्वनि कीर्ति होगी, कहां वो दिन और कहां आज के दिन, तुम इन्हें उनसे अच्छा बता रहे हो? बोलो कि हाँ बता रहे हैं, सोच समझ के बता रहे हैं। क्यों? क्योंकि आज जो ये मौजूद हैं, क्या दे कैमरा बोलते क्या बोलते इसको, मतलब जो पूरी वीडियो बना लेते हैं ना, ये उस वक्त नहीं थे। यदि होते तो महावीर की वीडियो बन गई होती और आज हम उस वीडियो को देखते तो सब मजा आ जाता, ये सारे झगड़े खत्म हो जाते थे। मैं चेता मर गई कौन धर्म सच्चा है, उनकी वाणी से अपन देख के समझ लेते कि नहीं समझ लेते, बोलो नहीं है वो महावीर की नहीं है, कुंद कुंद की नहीं है। अरे कांजी स्वामी के अलावा किसी की नहीं है, है ना वाणी उपलब्ध है। तो बोलिए हम कितने बड़े भाग्यशाली हैं कि 25 साल हो गए गुरुदेव कृष्ण को गए, लेकिन हमारे को बैसी की बैसी उनकी वाणी उपलब्ध है। और मैं तो कहता हूं कि हमने बहुत तरक्की की 25 साल में। देखो अकेला अंधेरा पक्ष देखने से कोई फायदा नहीं है, उजेला पक्ष भी देखो, हमने वो दिन भी देखे हैं गुरुदेव के, जब हम सोनगढ़ गए थे तो 15-50 आदमी बैठे रहते थे उस स्वाध्याय भवन में और गुरुदेव प्रवचन करते थे। और अगली बात बताऊं, जो 15-50 आदमी सब पगड़ी छाप हुआ करते थे, साठोत्तर का मतलब समझो 60 वर्ष के ऊपर वाले, और वे ऊंघते रहते थे और गुरुदेव सरकारी भगवान आत्मा आलिंग ग्रहण बोलते रहते थे। किसकी समझ में क्या आ रहा है ये उनकी समझ में आता था, लेकिन वो तो अपना कदम में स्वाध्याय करता हूं। और जब युगल जी हम ऐसे लोग पहुंच जाते थे जो उनको भरोसा होता था कि जो मैं कह रहा हूं ये पूरी तरह सामने वाला ग्रास कर रहा है, उस वक्त देखो कितना आनंद उनको होता था। क्या अब आज क्यों उससे ज्यादा अच्छा है कि आज रोजाना कम से कम 10,000 लोग उनके श्रोता हैं जो उनके प्रवचन कैसेटों पर सुनते हैं, समझे ना, आनंद भाई के पास है जहां जहां मौजूद है और गांव गांव में इन्होंने शर्त के साथ कि जो तुम गुरुदेव के प्रवचन सुनो तो मैं कंप्यूटर सब दूंगा, जो भी चाहो सब वो दूंगा, कंप्यूटर यहाँ कंप्यूटर भी देंगे, ये देंगे सब दोगे, हाँ दोगे कि साहब हम बैठेंगे कहाँ कि तुम्हारा स्वाध्याय भवन भी बना देंगे। करो तो स्वाध्याय, वो तो एक स्वाध्याय भवन था, गांव गांव में स्वाध्याय भवन बन गए और हजारों लोग सुन ले, बोलो आज का हम तरक्की नहीं की हमने, क्यों ऐसी हीन भाव करते हो कि हम पीछे गए हैं और सब खत्म हो गया और ऐसा हो गया और ऐसा हो गया ऐसा हो गया। पादमी जी कहा करते थे कि रोत रोता जाओ मरे की खबर ना आए, उज्जवल पक्ष को देखना सीखना चाहिए। क्यों आज कितनी नई उम्र के लोग इस तत्व ज्ञान से संबंधित हैं, परिचित हैं, बोलिए ना कि 500 विद्वानों की लाइन लग रही है वहां, इन्हें गिने विद्वान थे, बस राम जी भाई, खेम जी भाई, बहुत नंबर आ गया, तो बाबू भाई बस है ना, तो बाहर जाने वाले तो दो ही आदमी थे, खेम जी भाई और बाबू भाई, क्यों बाकी तो वही लगे पंडित हिम्मत भाई वगैरह बहुत अच्छे अच्छे विद्वान थे, लेकिन लेखक थे मेरे कहने का मतलब, लेकिन वो बाहर निकलते ही नहीं थे ना, तो समाज में प्रचार के क्या काम आए। इसलिए आज का जमाना बहुत अच्छा है, निराश होने की गंजमात की जरूरत नहीं है, लेकिन हमें ये संकल्प करने की जरूरत है कि हम अधिक से अधिक स्वयं पढ़ेंगे जिनवाणी को, गुरुदेव की वाणी को, उसका रहस्य समझने की पूरी ताकत से कोशिश करेंगे, जितना स्वयं समझ सकें स्वयं समझेंगे, और नहीं तो जिनके सहयोग से समझ सकें उनके, अभी भी ऐसे लोग विद्यमान हैं हमारे भाग से जिनने गुरुदेव श्री के सामने समझ लीजिए कि उस तत्व ज्ञान को सुना है और जिनमें गुरुदेव श्री ने भी विश्वास प्रकट किया है, तो हमारे पास ऐसा अवसर अभी तो विद्यमान है, वो करें हम, और इनकी वाणी को जन जन तक पहुंचाने के अनेक उपाय हैं। अनेक उपाय हैं माने क्या, हम साथ छपाकर जनवाणी को घर घर पहुंचाकर, कैसेटों को घर घर पहुंचाकर, जैसे बताया कि ये काम करके आज टीवी पर समय खरीद कर और टीवी पर प्रवचनों को जगह जन जन तक पहुंचाकर, कई उपाय हैं जिन्हें हम अधिकतम लोगों तक गुरुदेव की वाणी को, गुरुदेव की वाणी माने उन्हीं के अगली वाणी नहीं है, वे जो बोल रहे वो भी गुरुदेव की वाणी है और हम बोल रहे वो भी गुरुदेव की वाणी है, है ना, कोई ये नहीं कहता है पंडित हुकुमचंद की वाणी है, सब कहते हैं कांजी पंथी है, एक कांजी की वाणी है, बोलते कि नहीं बोलते, बोलिए आप, तो उनकी वाणी को जन जन तक पहुंचाने का कितनी सी बात है, क्या उनकी भाषा 25 साल पुरानी हो गई, गुजराती थी, सारा देश में हिंदी चलती है, राष्ट्रभाषा हिंदी है, अब उसमें हम देंगे तो कितने लोग समझेंगे, कितने नहीं समझेंगे, कितने देखेंगे, कितने नहीं देखेंगे, उनको भी देते हैं, दे ही रहे ना, चल ही रहा ना, तो इसलिए हम अकेले उन्हीं तक बंध के रह जाए ये कोई बात नहीं है, जितने अधिकतम लोगों को हम जनता के सामने पहुंचा सकें और उनकी दिव्यानी वाणी को पहुंचा सकें उतना बढ़िया काम है। और एक ऐसी बात है कि ऐसा नहीं समझना कि भाई अकेला कोई विद्वान पंडित ये काम कर सकता है कि बड़ा सेठ ही कर सकता है, विद्वान अपनी वाणी द्वारा पहुंचाएगा, लिखनी द्वारा पहुंचाएगा, तो सेठ अपने पैसे के माध्यम से, क्योंकि उसको जन जन तक पहुंचाने का काम ये स्पीकर भी तो करता है। मैं बोल रहा हूँ, मुझे सब लोगों तक पहुंचाने का काम ये कर रहा है कि नहीं कर रहा है? स्पीकर लगाने वाला भी तो कोई चाहिए, अकेले खरीद के देने वाला ही नहीं। अनंत भाई ने दे भी दिया, लेकिन जब तक रोजीना जी भाई आकर के यहाँ लगाएगा नहीं, तब तक क्या होगा? माने एक आदमी जो कोई भी सहयोग कर सकता है वो उसका योगदान है। मैं अपने ऑफिस में अपने चपरासियों से, अपने क्लर्कों से एक बात कहता हूँ, उनके जेहन में उतर गई है। अभय कुमार जी को मालूम है कि देखो तुम आजीविका के लिए नौकरी करते हो, तो वो काम तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। अभी किसी का ऑर्डर आया कि 100 समय साल भेज दो, तुम्हें भेजने तो पड़ेंगे, नहीं तो नौकरी नहीं रहेगी। लेकिन उसने कहा कि महावीर जयंती के दिन मुझे बांटना है, तो उस दिन तक पहुंच जाना चाहिए। तो आप एक चिंता करके कि नहीं आज ही मैं बना करके रवाना कर दूं, जिससे समय पर बढ़ जाए, तो तुम मुफ्त में पुण्य बांधोगे। काम तो करना पड़ेगा, काम तो करके तो पैसा मिल रहा है, लेकिन ये चीज पहुंचे, जन जन तक पहुंच जाए, और उसमें हम मेरा कोई योगदान हो सकता है तो मैं 2 घंटा लेट कर जाऊंगा, लेकिन आज ही इसको रवाना करके जाऊंगा, तो तू हो सकता है हमसे ज्यादा पुण्य मांग ले। माने इतने से इतना, यदि यहाँ से वहां रखना भी कमल बाबू ये काम है, ये हमारे बस की नहीं है। क्यों कि रोजाना खोल कर वहां बैठना, आप क्या समझते हैं ये आया है और ये बेचारा वहां बैठा रहता है धूप में? मैंने देखिए अभी इतने धूप में सारे कैसेट पड़े हैं। अरे 100 कैसेट बिक गए तो 100 कैसेट में 1000 घंटे का गए, तो 1000 घंटे में घर घर में लोग सुनेंगे तो कितना गया? इसकी तपस्या भी बहुत बड़ा योगदान है। मेरे कहने का मतलब, हम सब एक एक आदमी ऊपर से लेकर नीचे तक, जिसके पास बुद्धि है वो बुद्धि से, जिसके पास वाणी है वो वाणी से, जिसके पास लेखनी है वो लेखनी से, जिसके पास पैसा है वो पैसा से, जिसके पास स्वयं है शरीर में स्वयं कर सकता है वो अपने स्वयं से, और नहीं तर तो भावना से। इस बात में हम गुरुदेव की वाणी को जन जन तक पहुंचाने का महान काम करें तो उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इसी भावना के साथ में अपनी बात